लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कनाडा में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कनाडा की विनाशकारी आवासीय स्कूल प्रणाली में मिशनरियों के सहयोग के लिए कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस द्वारा मांगी गई ऐतिहासिक माफी की महागूंज के बीच मंगलवार को एडमंटन के कॉमनवेल्थ स्टेडियम में संत पापा फ्रांसिस ने 50,000 श्रद्धालुओं के लिए ख्रीस्त्याग अर्पित किया तथा बुजुर्गों के प्रति सम्मान संबंधी देशज लोगों की नेक परंपरा की भूरी भूरी प्रशंसा की। सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस कनाडा की प्रेरित यात्रा पर हैं। कनाडा के देशज और मूल निवासियों पर यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा ढाई गई सांस्कृतिक हिंसा की याद करना और इसके लिए क्षमा याचना करना इस यात्रा का केंद्र बिंदु था। मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने वयोवृद्धों के प्रति सम्मान दर्शाने तथा उनके अनुभवों से सीख लेने की देशज परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि बुजुर्गों की विरासत को आधुनिक समाज के भूलने की धुंध में नहीं खोया जाए। कनाडा के देशज समुदाय के लिए संत पापा फ्रांसिस के ये शब्द विशेष रूप से अर्थ गर्भित और मार्मिक सिद्ध हुए, क्योंकि 1870 से 1996 तक चले आवासीय विद्यालयों ने देशज जनजातियों की संस्कृतियों के लिए अनमोल पीढ़ियों के बीच संबंधों को नष्ट कर डाला था। ख्रीस्त्याग प्रवचन में संत पापा ने उम्मीद की कि इस प्रकार की हिंसा फिर कभी दोहराई न जाए। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की आशा की जिसमें हमारे देशज भाइयों और बहनों द्वारा सही गई हिंसा, उत्पीड़न और हाशिए पर जाने के इतिहास को फिर कभी दोहराया न जाए। एडमंटन के कॉमनवेल्थ स्टेडियम में संत पापा फ्रांसिस के आगमन पर देशज ढोलों के थपथपाने की लय, जय नारों और करतल ध्वनि से सारा वातावरण गूंज उठा था। अपनी पापा मोबाइल गाड़ी पर सवार संत पापा ने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए तथा कई बार गाड़ी से उतरकर वहां उपस्थित नन्हे बच्चों का चुंबन किया। कॉमनवेल्थ स्टेडियम में संत पापा फ्रांसिस के पहुंचने से पहले भूतपूर्व फर्स्ट नेशन राष्ट्रीय प्रमुख सभा के देशज नेता और आवासीय स्कूल के उत्तरजीवी फिल फोंटेन ने सोमवार को मास्क वाचिस में संत पापा फ्रांसिस द्वारा की गई क्षमा पर चिंतन किया। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम वास्तव में जिस बारे में बात कर रहे हैं वह है क्षमा। क्षमा के बिना हम कभी भी पुनर्मिलन और सुलह तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे, हम भूल नहीं सकते, किंतु हमें क्षमा करना चाहिए। कैथलिक कलीसिया को हम हमारे और कनाडा के सभी लोगों के टूटे हुए संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए आमंत्रित करते हैं। 26 जुलाई को माता मरियम की मां संत अन्ना के महापर्व के दिन संत पापा ने अपने ख्रीस्त्याग प्रवचन को वयोवृद्धों की देखभाल, उनकी सेवा और उनके प्रति सम्मान को समर्पित रखा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने दादा दादी के ज्ञान और अनुभव को उनके अस्तित्व के लिए मौलिक समझें और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उनके द्वारा सिखाए गए पाठों को संजोए रखें। संत पापा ने कहा, अपने दादा दादी के प्रति हम आभारी रहें, जिनसे हमें इतिहास से एक दुलार मिला है, जिनसे हमने सीखा कि अच्छाई, कोमलता, प्रेम और ज्ञान मानवता की ठोस जड़ें हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तथ्य को कदापि न भूलें कि हम बच्चे हैं, क्योंकि हम किसी के पोते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने हमेशा से ही विश्वास को युवा पीढ़ियों तक हस्तांतरित करने में दादा दादियों की भूमिका को सराहा है। और कई बार बोइनेस आयरस में रहते हुए अपनी दादी रोजा के साथ खुद अपने घनिष्ठ संबंधों का भी जिक्र किया है। कई मौकों पर उन्होंने दादा दादी के ज्ञान को संजोने और आज की अपशिष्ट संस्कृति के हिस्से के रूप में उनके परित्याग से बचने का संदेश दिया है। संत पापा फ्रांसिस की 6 दिवसीय कनाडा यात्रा एडमिंटन के अलावा उन्हें केबेक शहर, इकालुएत और नानावुद भी ले जा रही है। कनाडा के आवासीय स्कूलों में कैथलिक कलीसिया के मिशनरियों के सहयोग हेतु क्षमा याचना से पूर्ण इस प्रेरित यात्रा को इसीलिए प्रायश्चित तीर्थ यात्रा निरूपित किया गया है। कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष की यह यात्रा कनाडा के सत्य और सुलह आयोग की एक प्रमुख सिफारिश को पूरा करती है, जिसने कनाडा की धरती पर संत पापा से क्षमा याचना की मांग की थी।
संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन एडमोंटन में मिसा बलिदान के दौरान अपने प्रवचन में इतिहास से जुड़े रहने का आह्वान किया, जिससे भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा कि आज हम यीशु के नाना नानी का त्योहार मनाते हैं। जोआकिम और अन्ना के घर में बालक यीशु अपने बुजुर्ग जनों को जानते और उनकी निकटता का एहसास करते हुए उनके कोमल प्रेम और ज्ञान का अनुभव करते हैं। संत पापा ने विश्वासी समुदाय को 2 महत्वपूर्ण बातों पर चिंतन करने का आह्वान किया। हम सभी इतिहास की संतान हैं, इसे हमें सुरक्षित रखने की जरूरत है। इस प्रथम बिंदु पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा कि हम अलग अलग अकेले जीवन यापन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो दूसरों से अलग रहते हुए इस दुनिया में आता है। हमारी जड़ें हमारे परिवारों में हैं, जहां हम जन्म लेते बढ़ते और महत्वपूर्ण इतिहास का एक अंग बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस इतिहास का चुनाव नहीं किया है, बल्कि यह हमें एक उपहार स्वरूप दिया गया है, जिसका हम रसास्वादन करने हेतु बुलाए गए हैं। हम उनकी संतति हैं जो हमसे पहले चले गए हैं। हम उनके उत्तराधिकारी हैं। हम वास्तव में क्या हैं और कितने मूल्यवान हैं? इस तथ्य को समझने हेतु हमें अपने को उन नर और नारियों से संयुक्त करने की जरूरत है जिनसे हम आते हैं। ये वे हैं जिन्होंने हमें बिना किसी चीज की चाह रखे शर्तहीन प्रेम किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनमें हमने अपने परिचित विश्वास को खोज पाया। संत पापा ने कहा, हमने अपने पूर्वजों के द्वारा इस बात को सीखा कि प्रेम कभी थोपा नहीं जा सकता है, यह कभी भी किसी को आंतरिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता है। जोआकिम और अन्ना ने मरियम को इसी भांति प्रेम किया और मरियम ने यीशु को भी ऐसा ही प्रेम किया, एक प्रेम जो कभी गला नहीं घोंटता या उनको रोकता, बल्कि यीशु को अपनी प्रेरिताई पूरा करने हेतु साथ दिया, जिसके लिए वे दुनिया में भेजे गए थे। हम भी किसी दूसरे के अंतःकरण पर दबाव डालने की कोशिश ना करें, किसी की स्वतंत्रता पर रोक ना लगाएं। संत पापा ने कहा,
नो पर्डर सु रिकॉर्डो, नो ओलविडारनोस दे ला हिस्टोरिया के दियो अ लूज नुएस्ट्रा वीडा।
हम उनकी यादों को ना खोएं, ना ही उस इतिहास को भूलें जहां हमारा जन्म हुआ है। उनकी यादों को संजोकर रखने का अर्थ निरंतर उस विद्यालय की ओर लौटकर आना है, जहां हमने सर्वप्रथम यह सीखा कि प्रेम कैसे करना है। संत पापा ने विश्वासी समुदाय से यादगारी को संजोकर रखने का आह्वान किया, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा ही परिवार का वृक्ष विकसित होता है। ऐसा करने के द्वारा हम भविष्य का निर्माण करते हैं। हम इतिहास के रचयिता हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि हमें अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के आधार पर अपने को प्रेम किए जाने या प्रेम की कमी को पहचानने की आवश्यकता है। हम इस बात को ना भूलें कि जीवनदायी रस का प्रवाह जड़ों से टहनियों में, पत्तियों में, फूलों में और तब पेड़ के फलों में होता है। अपने को पूर्वजों की जड़ों में बनाए रखते हुए फल उत्पन्न करें। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासी समुदाय के समक्ष कई सवाल रखे। मैं उनके लिए क्या छोड़ रहा हूँ जो मेरे पीछे आने वाले हैं? मैं अपनी ओर से क्या दे रहा हूँ? क्या मैं स्वतंत्र रूप से दूसरों की सेवा करता हूँ, जैसे कि मुझसे पहले गुजरे लोगों ने मेरे लिए किया? हमारी कलिसिया, शहर, हमारे समाज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ?
जो हमसे पहले जा चुके हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिला है। जो हमारे बाद आने वाले हैं, उनके लिए हम किस प्रकार की वसीयत छोड़ना चाहते हैं? गुलाब जल या एक जीवित विश्वास? युद्ध से भरा विश्व या एक शांतिपूर्ण विश्व? तबाह कर दी गई सृष्टि या फिर एक स्वागत योग्य घर? मंगलवार को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत स्थित लेक स्टे एंड तीर्थ पर एकत्र श्रद्धालुओं को दर्शन देने से पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने उक्त ट्वीट संदेश के जरिए अपने गूढ़ विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान की। चंगाई के लिए विख्यात एडमंटन शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनाडा के लेक स्टे एंड लोकप्रिय तीर्थ स्थल पर संत पापा फ्रांसिस ने ईश वचन का पाठ कर धर्म विधिक प्रार्थना समारोह की अध्यक्षता की और स्टेन नामक इस झील के जल पर ईश्वर की आशीष का आह्वान किया। देशज ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार की आवाजों के बीच लेक स्टे एन पर पहुंचने के बाद संत पापा फ्रांसिस अपनी व्हील चेयर पर बैठे और झील को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हमारे देशज भाइयों और बहनों द्वारा सही गई हिंसा के घाव और उपनिवेशीकरण के भयानक प्रभावों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। 3 देशज भाषाओं में जन समुदाय का अभिवादन करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा, हम सभी को कलीसिया होने के नाते अब चंगाई और उपचार की आवश्यकता है। खुद को बंद करने के प्रलोभन से उपचार, सच्चाई की तलाश करने के बजाय संस्था की रक्षा करने से उपचार, सुसमाचार की सेवा करने के लिए सांसारिक शक्ति को प्राथमिकता देने के प्रलोभन से उपचार की आवश्यकता है। नाकोडा प्रथम राष्ट्र की 58 वर्षीय देशज महिला सिंडी बेयर हेड ने कहा, उनका यहाँ आना, झील को आशीर्वाद देना और लोगों को आशीर्वाद देना, मुझे लगता है कि वास्तव में ऐतिहासिक है। विशेष रूप से वैटिकन द्वारा देशज लोगों और हमारे आध्यात्मिक स्थल को स्वीकार करना सचमुच में एक ऐतिहासिक घड़ी है। स्मरण रहे कि एक सदी से भी अधिक समय तक कनाडा में 1.5 लाख से अधिक देशज बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया था और सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मिशनरियों द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में लाया गया था। कई को भूखा रखा गया था, मूल भाषा बोलने के लिए पीटा गया था और कभी कभी यौन शोषण का भी शिकार बनाया गया था, जिसे कनाडा के सत्य और सुलह आयोग ने सांस्कृतिक नर संहार निरूपित किया है और कनाडा सरकार एवं कनाडा की कलीसिया द्वारा क्षमा याचना एवं क्षतिपूर्ति की मांग की है। मंगलवार को स्टे एंड झील के तीर्थ पर संत पापा फ्रांसिस ने कनाडा की आवासीय स्कूल प्रणाली पर गंभीर जांच पड़ताल का आह्वान किया तथा देशज लोगों की सांस्कृतिक अस्मिता को जबरन मिटा देने के प्रयासों को एक दुखद बुराई और विनाशकारी त्रुटि निरूपित किया। बुधवार को संत पापा फ्रांसिस केबेक शहर की यात्रा कर रहे हैं, जहां वे कनाडा के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राजनयिक कोर के सदस्यों से औपचारिक मुलाकातें कर उन्हें अपना संदेश देंगे। शुक्रवार को रोम की वापसी यात्रा से पूर्व संत पापा फ्रांसिस कुछ घंटों के लिए कनाडा के आर्कटिक में इकालुइत शहर का दौरा कर यहां के देशज समुदाय से मुलाकात करेंगे। वस्तुतः इकालुइत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के सबसे तेजी से गर्म होने वाले हिस्सों में से एक है और उम्मीद है कि वहां संत पापा फ्रांसिस जलवायु परिवर्तन के खतरों पर अपने विचार प्रकट करेंगे।
मंगलवार को लेक स्टे एन के पवित्र तटों की वार्षिक तीर्थ यात्रा में हजारों तीर्थयात्रियों ने संत पापा फ्रांसिस का स्वागत किया। लेक स्टे एन झील कनाडा और उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैथोलिकों और मूलवासी लोगों के लिए अपने चंगाई जल और इसके आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। झील के पानी और उनके साथ मौजूद विश्वासियों को आशीर्वाद देने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने संध्या प्रार्थना की अध्यक्षता की। संत पापा ने अपने प्रवचन की शुरुआत करते हुए कहा,
Queridos hermanos y hermanas, abawash did tansi oki, buenos días. Es hermoso para mí estar aquí, peregrino con ustedes y en medio de ustedes. En estos días, hoy especialmente, me llamó la atención el sonido de los tambores que me han acompañado allí donde he ido.
कई तीर्थयात्रियों के उत्सव की शुरुआत करने वाले ढोल की थाप से दिल की धड़कन गूंजने लगती है, जो पीढ़ियों से इस ईश्वर की झील तक पहुंचने के लिए एक साथ चलते हैं, जिसके जल द्वारा चंगाई पाते हैं। पृथ्वी की ममतामयी हृदय की धड़कन को महसूस करते हुए इस जल पर मौन चिंतन करने से हमें जीवन के स्रोतों और अपने विश्वास की ओर लौटने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा, वास्तव में यह हमें पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है। हम यीशु की कल्पना करें, जिन्होंने गलील सागर एक झील के तट पर अपना अधिकांश सेवकाई कार्य संपन्न किया। ईश्वर ने इस परिधीय क्षेत्र के समृद्ध विविध संदर्भ को चुना, जहां विभिन्न जाति के लोग एकत्रित हुए, ताकि यहां से दुनिया को क्रांतिकारी भाईचारे का संदेश दिया जा सके। संत पापा ने कहा कि वही संदेश आज सदियों से चले आ रहे ढोल की आवाज और विभिन्न लोगों को एकजुट करने की आवाज से गूंज रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि भाईचारा वास्तविक है। स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया एकता का संदेश सभी तरह के मतभेदों से ऊपर है, और यह हमें एक साथ नए सिरे से सहभागिता की शुरुआत करने के लिए आमंत्रित करता है। संत पापा ने विश्वास के जीवित जल को प्रसारित करने में विशेष रूप से मूलवासी समुदायों में दादी की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया। संत पापा ने कहा, विश्वास शायद ही कभी एक कोने में बैठकर किताब पढ़ने से आता है, इसके बजाय यह परिवारों के भीतर फैलता है, माताओं के वचनों से, दादी के मधुर गीत के लहजों से फैलता है। संत पापा ने उनके बहुमूल्य भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा ने याद किया कि यूरोपीय उपनिवेश की दर्दनाक विरासत का हिस्सा इस तथ्य से उपजा है कि दादियों को अपनी भाषा और संस्कृति में विश्वास को पारित करने से रोका गया था। संत पापा ने कहा, वह नुकसान निश्चित रूप से दुखद था, लेकिन यहाँ आपकी उपस्थिति, लचीलापन और एक नई शुरुआत चंगाई की दिशा में तीर्थ यात्रा ईश्वर के लिए खुले दिल की गवाही है। ईश्वर समुदाय के जीवन को चंगा करते हैं। संत पापा ने तीर्थ यात्रियों को एक माता कलीसिया के निर्माण में योगदान करने के लिए आमंत्रित किया, जो प्रत्येक बेटे और बेटियों को गले लगाने में सक्षम है। आगे उन्होंने जोर देकर कहा, अगर हम अपने समुदायों के जीवन की देखभाल करना और चंगाई चाहते हैं, तो हमें गरीबों और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ शुरुआत करने की जरूरत है। यह इंगित करते हुए कि यीशु हमें बाहर जाने, देने और प्रेम करने के लिए कहते हैं, संत पापा ने सभी विश्वासियों को खुद से यह पूछने के लिए आमंत्रित किया कि वे जरूरतमंद लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, और विशेष रूप से मूल वासियों के लिए जिन्होंने इतनी पीड़ा सहन की है।
Que el Señor nos ayude a ir hacia adelante en el proceso de sanación hacia un futuro cada vez más saludable y renovado. Creo que sería también el deseo de sus abuelas y de sus abuelos, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Que los abuelos de Jesús, los santos Joaquín y Ana, bendigan nuestro camino.
ईश्वर हमें स्वस्थ और नए भविष्य की ओर चंगाई प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करे। मेरा मानना है कि यह हमारी दादी और आपके दादा दादी की भी इच्छा है। यीशु के नाना नानी संत जोआकिम और संत अन्ना हमें हमारी यात्रा पर आशीर्वाद दें। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ।